नमस्कार भारत। 5 मार्च दिन सोमवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा, पूर्वी घुटा में विद्रोहियों पर हमले नहीं रुकेंगे। रविवार को फिर 30 से ज्यादा मौतों की खबर। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, तीनों प्रदेशों में सत्ता पक्ष में बैठेंगे भाजपा विधायक। मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी होकर भी कांग्रेस विपक्ष में।
हमारे रीजनल पार्टी जो है सब मिलके इस बार कांग्रेस विरोधी सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमारे ऊपर इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जनादेश जो है उनका तो 20 ही मिला है, उनका तो 30 के ऊपर तो आंकड़ा पार नहीं किया।
और कश्मीर में एक चरमपंथी के साथ 3 नौजवानों की मौत पर तनाव, अलगाववादियों का बंद। होगी वसतुल्लाह खान की डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि पूर्वी घुटा में विद्रोहियों पर हमले जारी रहेंगे। सीरियाई सेना विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है। असद ने कहा है कि पश्चिमी देश जिस मानवीय संकट की बात कर रहे हैं वह झूठा है। इसकी तीखी आलोचना करते हुए अमरीका ने कहा है कि चरमपंथियों को खत्म करने के नाम पर रूस और ईरान की मदद से किए जा रहे हमलों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। सीरिया पर नजर रख रहे एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक रविवार की लड़ाई में 30 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सरकारी सैन्य बलों ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले करीब 1/4 इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसके पास सोमवार को मदद पहुंचाने की अनुमति है। इटली में हुए आम चुनावों में आए एग्जिट पोल के मुताबिक कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पा रही है। सत्ता विरोधी 5-स्टार मूवमेंट पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेती प्रतीत हो रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि एग्जिट पोल सही साबित हुए तो उनकी पार्टी ही अगली सरकार का आधार स्तंभ होगी। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक और दक्षिणपंथी गठबंधन सबसे बड़ा समूह बनकर उभर सकता है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि इस गठबंधन का हिस्सा पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लिस्कोनी की प्रवासी विरोधी पार्टी फोर्जा इटालिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है या नहीं। बर्लुस्कोनी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे क्योंकि एक टैक्स धोखाधड़ी मामले के बाद वो पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। एग्जिट पोल नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए 5-स्टार मूवमेंट के उम्मीदवार अल्फोंसो बिलाफेडे ने कहा,
chiaramente i primi dati che stiamo rilevando sono quelli che arrivano dagli exit poll, quindi sono dati da prendere con la giusta.
स्पष्ट रूप से जो सबसे पहला डाटा हम देख पा रहे हैं वो एग्जिट पोल है, इसलिए हम इसे सावधानी पूर्वक देख रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यदि जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजे बने तो हम ये कहेंगे कि हम असाधारण स्थिति के केंद्र में होंगे। हम इसे ऐतिहासिक नतीजा मानेंगे। भारत प्रशासित कश्मीर के सोपियां में रविवार रात भारतीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक कथित चरमपंथी और 3 नौजवानों की मौत हो गई है। सुरक्षा बल नौजवानों को चरमपंथियों से जुड़ा बता रहे हैं, जबकि अलगाववादियों का कहना है कि ये कश्मीर के आम युवा थे। इस घटना के बाद समूचे कश्मीर में बंद बुलाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। ग्वाटेमाला ने कहा है कि वह इसराइल में अपने दूतावास को इस साल मई में तेल अवीव से यरूशलम ले आएगा। राष्ट्रपति जिमी मोरालेज ने कहा है कि यरूशलम में नए अमरीकी दूतावास का उद्घाटन के 2 दिन बाद ग्वाटेमाला का दूतावास शुरू किया जाएगा। इसराइल समर्थक संगठन के साथ सालाना बैठक के बाद मोरालेज ने कहा कि वो रास्ता साफ करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल दिसंबर में यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। ट्रंप के इस कदम का फलस्तीनियों ने विरोध किया है। वेटिकन के खजांची और पोप फ्रांसिस के सलाहकार कार्डिनल जॉर्ज पेल ऑस्ट्रेलिया में एक अदालत की सुनवाई में पेश हुए हैं। अदालत ये तय करेगी कि भूतकाल में किए गए यौन अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। पेल सभी तरह के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने अपने पुलिस प्रमुख काले गाईहुरा और देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री हेनरी टुमिकुंडे को पद से हटा दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सीरिया के पूर्वी गुटा में सरकार के हमले रुकने के आसार नहीं लग रहे। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि पूर्वी गुटा में हमले जारी रहने चाहिए क्योंकि उनके सरकारी बल विद्रोहियों के कब्जे वाले इस क्षेत्र पर अपने अभियान में काफी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश जिस मानवता पर संकट की बात कर रहे हैं वह एक झूठ है। उधर अमरीका ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वहां रूस और ईरान के समर्थन से बेकसूरों की हत्या की जा रही है। एक निगरानी संगठन के मुताबिक रविवार को भी 30 से ज्यादा आम लोग मारे गए जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ब्यौरे के साथ दिलनवाज पाशा।
सीरिया के पूर्वी घुटा में बमबारी के बाद मलबे में फंसे इन बच्चों की चीखें दुनिया भर में सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं। बमबारी में फंसी ये बच्ची बता रही है कि लड़ाकू विमानों ने उनकी इमारत पर बम बरसा दिए हैं। लेकिन सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की राय अलग है। असद ने कहा है कि पूर्वी घुटा में विद्रोहियों के खिलाफ हमले जारी रहेंगे, हालांकि नागरिकों के निकलने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। राष्ट्रपति असद ने कहा है कि पश्चिमी देश जिस मानवीय संकट की बात कर रहे हैं वह झूठा है। राजधानी दमिश्क के नजदीक पूर्वी घुटा में करीब 4 लाख लोग सीरियाई सरकार की घेराबंदी में फंसे हैं। बीते 2 दिनों में सीरियाई बलों ने इस क्षेत्र पर अपना शिकंजा कसा है और करीब 1/4 इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पूर्वी घुटा के एक अस्पताल में घायलों का इलाज कर रही डॉक्टर अमानी बलोर कहती हैं, वो हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों, रॉकेटों और विस्फोटक बैरलों से हमले हो रहे हैं। हम शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुके हैं। हमारा खून सूख गया है। घुटा पर बमबारी लगातार जारी है। यहाँ के बैत सावा इलाके के अबू खलील बताते हैं, मैंने अपने बच्चों को मलबे के ढेर से निकाला है। अल्लाह हमारे परिवार की रक्षा करे, लेकिन अब भी लोग मलबे में फंसे हैं। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। 5 से 10 मंजिला ऊंची इमारतें धराशायी हो गई हैं। पुराने घर भी अंदर रह रहे लोगों के ऊपर गिर रहे हैं। यहाँ एक ओर जहाँ घायल और भूखे लोग हैं, वहीं दूसरी ओर मदद के लिए तैयार खड़े संगठन हैं जो अंदर नहीं पहुँच पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मदद कार्यालय की समन्वयक लिंडा टॉम बताती हैं,
We've been ready to go for a while now. East Ghouta has not been reached with humanitarian assistance.
हम भीतर जाने के लिए तैयार हैं। पूर्वी घुटा में 14 फरवरी के बाद से मानवीय मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है, भले ही जरूरत के मुकाबले ये मदद बहुत कम है। इससे पहले 70 दिनों तक मदद पूर्वी घुटा नहीं पहुंच सकी थी। हम दमिश्क में हैं। रेड क्रॉस और सीरियन अरब रेड क्रेसेंट के अलावा संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं भी मदद पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी हैं। हम सामान के साथ तैयार हैं, ट्रक तैयार हैं, हम भीतर जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूर्वी घुटा में बीते 2 दिनों की लड़ाई में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हैं। एक अस्पताल में अपने घायल बच्चे के पास खड़ी ये माँ कह रही है, मैं अपने बेटे के मरने का इंतजार कर रही हूँ। कम से कम वो दर्द से आजाद तो हो जाएगा। वो सीधे जन्नत जा रहा है जहाँ कम से कम उसे खाना तो मिल सकेगा।
दिलनवाज पाशा से ब्यौरा सुन रहे थे आप।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब बात भारत की। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में मेघालय एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 59 में से 21 सीटें उसे मिली। इसके बावजूद वह सरकार बनाती नहीं दिख रही है। किसी को बहुमत नहीं था, इसलिए सस्पेंस था कि सरकार कौन बनाएगा। मगर भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने कल ऐलान किया कि NPP, UDP, PDF, HSPDP, एक निर्दलीय और भाजपा ने मिलकर एक गठजोड़ बनाया है जिसमें 34 विधायक शामिल हैं और कोनराड संगमा इस गठबंधन के नेता होंगे। भाजपा का कहना है कि राज्यपाल गंगा प्रसाद ने NPP और BJP की शुमारी वाले इस गठबंधन को सरकार बनाने का मौखिक न्योता दे दिया है। यानी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जहाँ चुनाव थे, भाजपा या तो सरकार बना रही है या सरकार बनवा रही है। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में जोड़ तोड़ की राजनीति के बाद मंगलवार को नई सरकार बनने जा रही है। विधानसभा की 60 सीटों वाले इस प्रदेश में कांग्रेस भले ही 21 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP ने BJP और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। NPP केंद्र में NDA के साथ है और कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर के लिए BJP अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में भी शामिल है। NPP को राज्य में 19 सीट पर जीत मिली है, जबकि BJP केवल 2 सीट ही जीत पाई है। ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर BJP पर राजनीतिक फायदा लेने के आरोप लग रहे हैं। मेघालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा लोकसभा सांसद विंसेंट पाला ने BBC से कहा, ये सब कुछ BJP का किया कराया है, यह एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मेघालय में उनको कोई बड़ी जीत नहीं मिली है और वो यहाँ के सामंजस्य को बिगाड़ने के लिए आए हैं। BJP अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हम राज्यपाल से भी मिले थे, ये थे विंसेंट पाला के शब्द। कांग्रेस के इन आरोपों पर BJP तर्क देती है कि मेघालय में लोगों ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने की दिशा में जनमत दिया है, वरना कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता। इस संदर्भ में मेघालय प्रदेश BJP के प्रवक्ता बासु चक्रवर्ती कहते हैं,
कनक शर्मा को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट दिया जाए और हमारे रीजनल पार्टीज जो है सब मिलके इस बार कांग्रेस विरोधी सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। परसों रोज 10:30 हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल ने हम लोग को मौखिक ये आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दिया, अभी तक तो लिखित रूप से आई नहीं है। देखिए, हमारे ऊपर इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जनादेश जो है उनका तो 20 ही मिला है, उनका तो 30 के ऊपर तो आंकड़ा पार नहीं किया।
इससे पहले मेघालय में सरकार गठन का दावा कांग्रेस ने भी किया था, पर इस बात की संभावना कम दिख रही है कि राज्यपाल उन्हें सरकार गठन के लिए बुलाएंगे। हालांकि राज्यपाल ने रविवार देर शाम तक किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का लिखित में कोई न्योता नहीं भेजा है। ऐसे में सभी को मंगलवार का इंतजार रहेगा। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां में रविवार रात एक कथित चरमपंथी और 3 नौजवानों की सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मौत हो गई। सेना प्रवक्ता के मुताबिक एक चेकपोस्ट पर चरमपंथियों के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में एक चरमपंथी मारा गया। सेना का कहना है कि जो बाकी 3 नौजवान मारे गए वे चरमपंथी की गाड़ी में सवार थे और उनके ओवरग्राउंड वर्कर थे, यानी उनसे जुड़े थे। लेकिन कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का कहना है कि वे तीनों युवक आम नागरिक थे। आज इसी मसले पर अलगाववादियों ने कश्मीर बंद बुलाया है। हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर श्रीनगर से लाइव इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। माजिद, सेना और अलगाववादियों के अपने अपने दावे हैं, क्या संदिग्ध चरमपंथी और तीनों युवकों की पहचान हो सकी है अभी तक, तो उसमें क्या सामने आया?
बिल्कुल, देखिए, ये जो 3 युवक मारे गए हैं उनकी पहचान हो गई है और तीनों के नाम भी सामने आ गए हैं। और तीनों ही जो युवा है वो शुपियां के वहां के स्थानीय नागरिक है, और एक का नाम मोहम्मद शाहिद है, दूसरे का नाम शाहनवाज है और तीसरे का नाम सुहेल खलील वगैरह के रूप में हुई है। और इनके घर वालों ने भी, जो आर्मी ने क्लेम किया है कि ये OGWs थे, उस क्लेम को कंटेस्ट किया है और कहा है कि ये सिविलियन थे। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इलाके के, उन्होंने भी कहा है कि ये स्थानीय है। और इस घटना के बाद उस पूरे इलाके में काफी देर रात तक जो है प्रदर्शन हुए हैं, और अभी तक शायद जो अभी देर रात तक हमें खबरें मिली।
जी, वही मैं पूछना चाह रहा था कि घटना के बाद कल रात से अभी हालात कैसे हैं, तनाव क्या वाकई है और कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही?
बिल्कुल, देखिए, काफी इस घटना के बाद काफी तनाव है उस पूरे इलाके में, उस वहां ही नहीं बल्कि इसका असर पूरे कश्मीर श्रीनगर तक भी आ गया है। श्रीनगर में कल देर रात जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वहां पे भी जो है छात्रों ने प्रदर्शन किए और आज कश्मीर बंद बुलाया है। और आज जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होने थे KS के, वो उनको भी पोस्टपोन किया गया है। रेल सेवाएं जो है आज दिन के लिए बंद कर दी गई हैं और पूरे साउथ कश्मीर में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो अब ये निर्भर कर सकता है कि जूं जूं दिन डलेगा और प्रदर्शन कहां कहां तक फैलेंगे और इस घटना में पोटेंशियल उतना है कि ये मामला आगे और भी फैल सकता है और इससे अनरेस्ट बढ़ सकता है कश्मीर में।
बहुत शुक्रिया माजिद जहांगीर, हमसे जुड़े थे श्रीनगर से। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा मेरे साथ स्टूडियो में हैं। बताएं दिलनवाज, क्या खास है आज के अखबारों में?
जी, पूर्वोत्तर की सियासी सरगर्मियों के अलावा आज से शुरू हो रहे संसद के सत्र से जुड़ी खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। अखबार बता रहे हैं कि संसद के सत्र में जो वित्तीय घोटाले हुए हैं, विपक्ष उसका मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है। इसके अलावा जो सियासी गुणा भाग पूर्वोत्तर में हो रहा है उससे जुड़ी खबरें अखबारों में हैं। नवभारत टाइम्स बता रहा है, 2 सीटों वाली बीजेपी ने 21 सीटों वाली कांग्रेस से मेघालय छीना, दिलचस्प।
नई दुनिया ने इसको लिखा है कि 2 के दम पर मेघालय में भाजपा सरकार।
और एक और सियासी खबर कल हमने बीबीसी हिंदी के पन्ने पर भी बताया था और आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, सपा को बसपा का साथ मिला है उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। इसी से जुड़ी खबर पर शीर्षक लगाया है नवभारत टाइम्स ने, 23 साल बाद हाथी फिर साइकिल पर सवार।
और 23 साल बाद ये हो रहा है और 9 साल बाद हो रहा है कि फिर से 10वीं की बोर्ड और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं। सीबीएसई की वार्षिक परीक्षाओं में 28 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। नई दुनिया के पहले पन्ने पर ये खबर।
जी कुलदीप, आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा किताबों की बात कर ले रहता हूं। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 7वीं की जो किताब है इतिहास की, उसमें महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में अधिक पढ़ाया जाएगा बजाय मुगलों के, ऐसी शिकायतें कुछ हिंदू संगठनों ने की थी। 7 साल बाद समीक्षा की गई है एनसीईआरटी की किताबों की और ये जो बदलाव हैं इनका प्रस्ताव दिया गया।
एक खबर और नई दुनिया पर मुझे दिख रही है, दिलचस्प है। चुनाव एक साथ कराने पर सरकार करेगी मशविरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ये मध्य प्रदेश की खबर है। विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने के लिए उच्च स्तरीय एक समिति का ऐलान किया है। उस समिति के सदस्यों का नाम, के नाम जो भी हैं वो इस खबर में लिखे हुए हैं।
जी, आप चुनावों की बात कर रहे हैं तो बता दें केसीआर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दीदी यानी ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया है और एक राष्ट्रीय गठबंधन की बात कही है और ये खबर अन्य अखबारों के पहले पन्ने पर भी है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए। अगर आप जिंदा हैं पर कागजों पर मृत घोषित कर दिए गए हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? आजमगढ़ के लाल बिहारी से पूछिए, जिन्हें भू राजस्व अभिलेखों में खुद को जिंदा साबित करने के लिए 18 साल संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे खुद को जिंदा साबित करने में सफल रहे। मुआवजे और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे मामले को लेकर एक बार फिर वो चर्चा में हैं। क्या है पूरा मामला, लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र बता रहे हैं।
खूबसूरत जिंदगी के करीब 2 दशक लंबे सुनहरे पलों को यदि कोई व्यक्ति ये साबित करने की जद्दोजहद में गुजार दे कि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, तो जिंदगी की असल खूबसूरती और उन पलों का सुनहरापन उससे बेहतर भला कौन जान सकता है। आजमगढ़ के लाल बिहारी जब अपनी पहचान के लिए जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवाने पहुंचे तो पता लगा कि कागजों पर तो वो काफी पहले मर चुके हैं।
हमारे पिताजी बचपन में मृत हो गए और उसके बाद मेरा पालन पोषण मुबारकपुर अमीरो आजमगढ़ में हुआ और जमीन जो थी हमारे जन्मभूमि ग्राम खलीलाबाद की हमारे नाम हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ बनारसी साड़ी में बाल श्रमिक के रूप में काम करने लगा। जब बड़ा हुआ तो मुझे कर्जा बनाने की बात आई, मतलब बनारसी साड़ी कारखाना लगाने के लिए। जब लोन लेने गया तो वो मांगा आजाद निवास बैंक वाला। जब वो गया वहाँ लेखपाल के पास तो ये कहा गया कि अरे भाई, लाल बिहारी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो कह रहा कि वो एक लाल बिहारी था, वो मर गया। उसको
दरअसल लाल बिहारी के पिता की मौत के बाद परिवार वालों ने उन्हें सरकारी अभिलेखों में मृत दिखाकर उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। जाति और निवास पत्र बनवाने के क्रम में उन्हें इस बात का पता चला और फिर इसके बाद खुद को जीवित घोषित कराने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, खुद को अपराधी साबित करने की कोशिश से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने तक।
संघर्ष किया अपने जिंदा होने के लिए, वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, विधानसभा में पर्चा फेंका, अपने चचेरे भाई का अपहरण किया, अपने पत्नी के नाम विधवा पेंशन का फार्म भरा।
लाल बिहारी के इन शक्ति प्रदर्शनों ने शायद प्रशासन को यह आभास करा दिया कि इतना सब करने वाले व्यक्ति के शरीर में कुछ और हो या न हो, प्राण तो जरूर है। और फिर 1994 में प्रशासन ने उन्हें जिंदा बता दिया।
सैनिक को लड़ाई लड़ते लड़ते 30 जून 1994 में 18 वर्ष में मुझे पुनः जिंदा कर दिया गया।
लाल बिहारी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। वो बताते हैं कि आजमगढ़ के मुबारकपुर में बुनकर का काम करके वो अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरते रहे और ये लड़ाई भी लड़े। परिवार वालों की साजिश और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा लाल बिहारी को किस कदर भुगतना पड़ा ये उनके बेटे विजय भारत बताते हैं।
जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में जाते थे एक हम लोग मजाक का पात्र के टाइप से नहीं होता है कि अब अरे मृतक लड़का आ गया, भूत का लड़का आ गया, काफी हम लोग का मजाक उड़ाया जाता था। अभी भी हम लोग उसी से झेलते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम हमेशा उससे पीड़ित रहे हैं।
साल 2005 में लाल बिहारी ने मानहानि और मुआवजे के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। आजमगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह कहते हैं,
ये था कि जो भी लोग दोषी हैं उसके उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या होनी है और क्या हुई है उसके संबंध में स्टेटस रिपोर्ट हमें फाइल करनी थी। जो मैंने फाइल कर दिया था उसमें अभी न्यायालय ने कुछ और डायरेक्शन दिया है, उसके आधार पे भी जो है कार्रवाई करके जो 13 तारीख से पहले शपथ पत्र दाखिल हो जाएगा।
बहरहाल कोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। लाल बिहारी को प्रशासन ने जिंदा भी कर दिया है और हो सकता है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें मुआवजा भी मिल जाए, लेकिन खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लाल बिहारी ने इतनी लंबी लड़ी कि अब लोग उन्हें लाल बिहारी मृतक के नाम से जानने लगे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब आपकी पसंदीदा वसतुल्लाह खान की डायरी।
जिसे आप राज्यसभा कहते हैं उसे हम पाकिस्तान में सेनेट कहते हैं। सेनेट के 104 मेंबर 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 3 वर्ष बाद 6 साल मुकम्मल करने वाले आधे मेंबरों की जगह नए मेंबर आ जाते हैं। सेनेट के मेंबर कौमी असम्बली और चारों प्रदेशों यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ चुनती हैं। कौमी असम्बली में तो हर प्रदेश की सीटें आबादी के हिसाब से कम ज़्यादा होती हैं, मगर सेनेट में हर प्रदेश की बराबर सीटें होती हैं। यानी सेनेट पाकिस्तानी फेडरेशन का तराजू है जिसके पलड़े बराबर के हैं। सेनेट का काम यह है कि वो कोई ऐसा कानून मंजूर ना होने दे जो किसी एक ख़ास गुट या प्रांत के हित में हो। इसीलिए कौमी असम्बली में पास होने वाले किसी भी कानून की सेनेट से मंजूरी लाजमी है। चुनाचे सेनेट में बुद्धिजीवी लोगों को होना चाहिए, मगर पिछले कई वर्ष से राजनीतिक दलों ने सेनेट को ऐसी सभा बना दिया है जिसमें भेजने के लिए काबिलियत कम और जी हुजूरी, भाई भतीजावाद, पैसा, सिफारिश और ताकत को ज़्यादा देखा जाता है। जैसे ही सेनेट चुनाव करीब आते हैं मंडी खुल जाती है, बोली लगनी शुरू हो जाती है, ताकत कम है तो दूसरी पार्टियों के मेंबरों को खरीदने की कोशिश होती है, इस्टेब्लिशमेंट किसी खास गुट को ऊंचा या नीचा दिखाना चाहती हो तो वो भी प्रदेश असम्बलियों के मेंबरों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश से नहीं चूकती। और फिर ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, जैसे बलूचिस्तान में कहने को नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी है, मगर सेनेट इलेक्शन से पहले उसमें बगावत हो गई और सारे सेनेटर बागियों के धड़े से चुन लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की 6 सीटें हैं, मगर उसने इमरान खान की पार्टी के 20 से अधिक असम्बली मेंबरों को नोट दिखा के अपने हित में वोट डलवा लिए और 2 सेनेट सीटें ले उड़ी। इमरान खान मुँह देखते रह गए। इमरान खान की पार्टी के ही एक मेंबर ने पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ की पार्टी के 14 मेंबरों से वोट पकड़ लिए, हालांकि नवाज शरीफ और इमरान खान कट्टर विरोधी हैं। सिंध प्रांत में भी यही हुआ और जिसका जोर और पैसा चला उसने सीटें उचक ली। अब जो इस रास्ते से सेनेट में आएगा वो पहले अपना माल पानी खर्चा पूरा करेगा या देश या अपने प्रांत की बेहतरी के बारे में सोचेगा? ये लोकतंत्र है कि मायातंत्र? हर बार चैपें चैपें होती है और फिर जीवन अपने टेढ़े ढरे पे उस वक्त तक चलता रहता है जब तक अगली चुनाव मंडी नहीं लग जाती।
वसतुल्लाह खान की ये डायरी आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत और इंग्लैंड 1-1 से बराबरी पर रहे। इस मुकाबले में पहला गोल भारत ने किया। खेल के 14वें मिनट में शिलानंद लाकरा ने इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति को छकाते हुए मैदानी गोल किया। मध्यांतर तक स्कोर यही रहा, लेकिन खेल के 52वें मिनट में मार्क ग्लेगहॉर्न ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। अंततः इसी स्कोर पर मैच ड्रॉ रहा। इससे पहले भारत को अर्जेंटीना के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारत का अगला मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। और अब समीक्षा, आईपीएल से पहले कितना महत्वपूर्ण है 3 देशों का 2020 टूर्नामेंट। कल से श्रीलंका में त्रिकोणीय 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, जहां मेजबान श्रीलंका के अलावा भारत और बांग्लादेश अपना दमखम दिखाएंगे। पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका में एक दिवसीय और 2020 सीरीज अपने नाम करने के बाद जब भारतीय टीम वापस स्वदेश लौटी तो कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया और टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। कुछ शिकायत के साथ क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
आराम की जरूरत भी थी, जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, जिनपे वर्कलोड बहुत ज्यादा था साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल सही निर्णय है। लेकिन मेरी एक शिकायत है कि मयंक अग्रवाल, जो ढेर सारे रन बनाए इस सीजन में हर टूर्नामेंट में, उन्हें पीछे रखे गए हैं सिलेक्टर ने, तो मेरे ख्याल से शायद उनके साथ कुछ जाती हुई है।
आराम मिला बड़े नाम वाले खिलाड़ियों को, तो अब अवसर वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों के पास, जो कुछ कर दिखाएं। पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल कहते हैं, भविष्य पर नजर है तो जमकर खेलो।
सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जितने भी जो बेंच स्ट्रेंथ है, इन्होंने कभी ना कहीं काफी क्रिकेट खेली हुई है और अच्छा भी कर रहे हैं, तो इसलिए चुनौती रहेगी। अगर आपने इंडियन टीम के लिए खेलना है तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा।
लेकिन अंतिम 11वें जगह बनाना अब भी आसान नहीं। क्या 2 विकेटकीपर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत एक साथ खेलेंगे? क्या केएल राहुल पर दबाव होगा? अयाज मेमन अपनी बात रखते हैं।
केएल राहुल पे काफी निगाह रहेगी, क्योंकि अच्छा दौरा नहीं था उनके लिए साउथ अफ्रीका का। जहां तक दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत का सवाल है, दोनों ही शायद खेलें, दोनों खेलते हैं तो फिर ऋषभ पंत के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि दिनेश कार्तिक फील्डर के तौर पे भी खेल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहली मैच जीतना बहुत जरूरी है, शायद फाइनल में जगह बना लेना पसंद करेंगे, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज है, वाशिंगटन सुंदर है, वैसे खिलाड़ी तो लेके गए हैं, छोटा टूर्नामेंट है, लेकिन जहां भी मौका मिले उन्हें खिलाना चाहिए।
वैसे रोहित शर्मा के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा कुछ खास नहीं रहा, अगर एक दिवसीय मैच में उनके शतक को निकाल दें तो वो खुद भी शायद इस दौरे को भूल नहीं चाहें। लेकिन मदनलाल का मानना है कि रोहित शर्मा को मालूम है कि किससे कैसे निपटा जाए।
हमारी इंडियन की आईपीएल टीम की कैप्टनसी करते हैं, आगे एक मैच विराट कोहली साउथ अफ्रीका में नहीं खेला था तो उन्होंने कैप्टनसी की थी, तो उनको काफी एक्सपीरियंस आया था। मेरे को लगता है कि वो टीम को अच्छी तरह लीड करेंगे, उनको भी मालूम है क्या उनका गोल है, क्या उनका पर्पज है।
इस सीरीज में बांग्लादेश को बड़ा झटका पहले ही लग चुका है, जब साकिब अल हसन जैसे बड़े ऑलराउंडर को चोट की वजह से बाहर बैठना पड़ रहा है, तो दिनेश चांदीबल की कप्तानी में खेलने वाली श्रीलंका अपनी खोई साख पाने की कोशिश करेगी। कल पहले ही मैच में भारत का सामना श्रीलंका से है और उसके बाद बांग्लादेश से। लगातार 2 मैचों से भारत की दशा और दिशा दोनों का अनुमान लग जाएगा। दाव पर अगर कुछ है तो बस कुछ बड़े नाम वाले खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस। उधर किर्गिस्तान में बीते शनिवार को एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हुआ, जहां भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। चीन 7 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 12 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि पूर्वी घुटा में विद्रोहियों पर हमले जारी रहेंगे। सीरियाई सेना विद्रोहियों के कब्जे वाले इस इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है। इटली में हुए आम चुनावों के आए एग्जिट पोल के मुताबिक कोई भी पार्टी बहुमत नहीं पा रही है। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां में रविवार रात भारतीय सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 1 कथित चरमपंथी और 3 नौजवानों की मौत हो गई है। सुरक्षा बल नौजवानों को चरमपंथियों से जुड़ा बता रहे हैं, जबकि अलगाववादियों का कहना है कि ये आम युवा थे। ग्वाटेमाला ने कहा है कि वे इसराइल में अपने दूतावास को इस साल मई में तेल अवीव से यरूशलम ले आएगा। वैटिकन के खजांची और पोप फ्रांसिस के सलाहकार कार्डिनल जॉर्ज पेल ऑस्ट्रेलिया में एक अदालत की सुनवाई में पेश हुए हैं। अदालत ये तय करेगी कि उन पर यौन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए या नहीं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।